कुंज बिहारे माधव कुंज बिहारे गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना यमुना तीरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारे राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारि यमुना यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपुराजकाचार्य अष्टोदर्श शिष्यमदभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपुराजकाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिनामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हर गुरुवार को हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत पर चर्चा करेंगे जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं और श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस संस्था की स्थापना हुई है, तो इसीलिए प्रभुपाद के विषय में जानना उनकी जीवनी के विषय में जानना, उन्होंने क्या हमारे लिए किया, कैसे किया, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इससे हृदय में कृतज्ञता का भाव बढ़ता है। और अगर एक शुद्ध भक्त के प्रति केवल कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में हो तो कृष्ण की कृपा को ये आकर्षित करता है। भक्ति में आगे बढ़ने का या भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एक शुद्ध भक्त की कृपा को प्राप्त करना, एक शुद्ध भक्त की सेवा करना, क्योंकि उस सेवा से श्री कृष्ण ऐसे भक्त के दास बन जाते हैं, ऐसे भक्त को ऐसे भक्त के हाथों अपने आप को बेच देते हैं जो भक्त एक शुद्ध भक्त की सेवा मात्र करता है। जैसे पुराणों में श्लोक दिया गया है तुलसी महारानी की पूजा के विषय में कि अगर कोई केवल तुलसी दल मात्रे न जले न चुलके न बा, अगर कोई व्यक्ति केवल तुलसी का दल भगवान को अर्पण करता है, थोड़ा सा जल अर्पण करता है, तो वो भगवान जो भक्त वत्सल हैं विक्रीडंती बेच देते हैं अपने आप को उस भक्त के हाथ में। तो तुलसी का दल क्यों प्रिय है भगवान को? क्योंकि तुलसी भगवान की भक्त हैं। तो जो भी भगवान से संबंधित हैं उनकी सेवा, उनकी आराधना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशां विष्णुराराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीया नाम सम अर्चनम। तो तदीया मतलब अर्थात इस श्लोक का ऐसा आशय है कि सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है, लेकिन उससे भी परम तस्मात् परतरं देवी, उससे भी परम आराधना है भक्तों की आराधना। और तदीया नाम मतलब वो सारे व्यक्ति, वो सारी वस्तुएं जो भगवान से संबंधित हैं। जैसे गंगा का जल भगवान के चरणों को छू कर निकलता है, इसीलिए वो शुद्ध और पावन करने वाला है। और उसकी आराधना, गंगा की आराधना, गंगा की सेवा भगवान को प्रिय है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में समझाते हैं कि श्री कृष्ण इस कलयुग में चार रूपों में प्रकट होते हैं। वैसे तो वो नाम के रूप में हैं ही, लेकिन नाम के अलावा वो चार रूपों में प्रकट होते हैं, जिनमें से एक है वैष्णव। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं श्रीमद् भागवत ये उनका एक रूप है, गंगा देवी ये उनका एक रूप है, अर्थात गंगा के रूप में प्रकट होते हैं क्योंकि अपने चरणों के निकली हुई कृपा को वो बांट रहे हैं, और साथ ही साथ वैष्णव। तो भगवान इस कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के अनुसार वैष्णवों के रूप में प्रकट होते हैं। वैष्णवों के रूप में प्रकट होने का अर्थ ये नहीं है कि वैष्णव भगवान हैं। वैष्णवों के रूप में प्रकट होने का अर्थ है कि अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी कृपा, अपना सारा भाव वे वैष्णवों में प्रदान कर देते हैं। तो वैष्णव भगवान कलयुग में भगवान के रूप में वैष्णव कार्य करते हैं, इसको कहा जा सकता है। तो जो कार्य भगवान को करना चाहिए, जैसे भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, लोगों पर दृष्टिपात कर उनको उद्धार करते हैं, उनको मार कर उनका उद्धार करते हैं, तो इस कलयुग में वैष्णव ये कार्य करते हैं। अगर वैष्णव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो निश्चित उसका उद्धार है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आज भी हमें कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं हमने एक बार प्रभुपाद को देखा था, और आज कई सालों के बाद वो भक्ति में जुड़ते हैं, भले बीच में वो नहीं रह पाए या संपर्क में नहीं आए, भक्ति नहीं की। तो प्रभुपाद के उदाहरण से हम लोग सीखते हैं कि कैसे भगवान वैष्णवों के रूप में इस पृथ्वी पर आज भी हैं। जैसे कई लोगों ने, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य बताते हैं कि उन्होंने केवल प्रभुपाद को जल ग्रहण करते हुए देखा कि प्रभुपाद कैसे जल पी रहे हैं, बस इतना देखकर आकर्षित हो गए उनकी इस क्रिया से कि उन्होंने जीवन समर्पण कर दिया। श्रील प्रभुपाद के कई ऐसे भक्त हैं जिन्हें प्रभुपाद का संग बहुत ज़्यादा नहीं मिला, कोई कोई तो ऐसे भक्त हैं जिन्हें दीक्षा का भी समय नहीं प्रभुपाद का संग मिल पाया। तो ऐसे भी भक्त उन्होंने अपना अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, आज भी वो प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रभुपाद ने बहुत संग दिया, प्रभुपाद ने शिक्षा दी, सिखाया, ऐसे कई भक्तों को उन्होंने सिखाया, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जिनको प्रभुपाद का संग नहीं मिल पाया, पूरे जीवन में केवल एक या दो बार प्रभुपाद से मिले, लेकिन जीवन समर्पित किया प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो इसीलिए हमें ये बहुत आवश्यक है जान लेना कि प्रभुपाद ने हम सब के लिए क्या किया, कैसे हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद हैं कौन। अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव के बहुत निकट हैं। 1977 में श्रील प्रभुपाद ने अपने देह को त्यागा 14 नवंबर के दिवस पर। तो अभी 1977 से लेकर अभी कितने वर्ष हुए हैं, इस्कॉन को बनाए हुए ही केवल 50 वर्ष हो रहे हैं। तो अगर 1977 से लिया जाए तो इस समय केवल हम लोग 40 वर्ष प्रायः प्रभुपाद के तिरुभाव के निकट हैं। तो 40 वर्ष केवल हुए हैं, इसीलिए मानव समाज प्रभुपाद के महत्व को समझ नहीं पाया। हम लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद ने एक संस्था बनाई, कई लोग बनाते हैं, प्रभुपाद ने कुछ ग्रंथों को लिखा, बहुत से लोग लिखते हैं, प्रभुपाद ने कुछ शिष्य कुछ मंदिर बनाए, कई लोगों ने निर्माण किया। तो हम लोग प्रभुपाद के गुणगान को इतने में ही जानते हैं कि उन्होंने कुछ मंदिर बना दिए, कुछ ग्रंथ लिख दिए, भक्त बनाए इत्यादि। इसीलिए जब भी गुणगान किया जाता है तो हम कहते हैं कि प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की, सारे विश्व में भ्रमण किया इत्यादि। ये तो प्रभुपाद का गुणगान है ही, लेकिन सही दृष्टि में प्रभुपाद ने क्या कार्य किया ये आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वर्ष पे वर्ष बीतते जाएंगे, लोगों को प्रभुपाद का महत्व समझ में आएगा, और उस समय लोग जानेंगे कि प्रभुपाद ने क्या किया। प्रभुपाद ने केवल इसीलिए नहीं, ऐसा ही नहीं कहा कि मेरे जो ग्रंथ हैं वे कानून हैं अगले 10,000 वर्षों तक के लिए, जब तक ये इस्कॉन रहेगा या जब तक भक्ति का वातावरण इस पृथ्वी पर रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग ये जानेंगे प्रभुपाद के तिरुभाव। ऐसा होता है जब हम व्यक्ति के बहुत निकट होते हैं, उसके महत्व को समझ नहीं पाते, हम उसको बहुत सस्ता ले लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि ठीक है इनके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति है, इन्होंने थोड़ा बहुत वैराग्य, थोड़ा बहुत समर्पण किया है, उससे ज्यादा क्या। तो ऐसे ही हम आज, क्योंकि प्रभुपाद के तिरुभाव के बहुत निकट हैं 30-40 वर्ष, इसलिए हम प्रभुपाद के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद ने क्या किया, किस तरह का बदलाव मानव समाज में लाए हैं। एक क्रांति का प्रारंभ प्रभुपाद ने किया है, और ऐसी क्रांति जो उनके तिरोभाव के बाद रुकी नहीं, बढ़ी है। साधारणतः जब व्यक्ति कोई बदलाव समाज में लाते हैं, सामाजिक क्रांति होती है, तो जब तक वो व्यक्ति रहता है उसके साथ वो क्रांति चलती है, वो बदलाव चलता है और फिर समाप्त हो जाता है। व्यक्ति चला गया, बदलाव समाप्त, फिर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई कार्य प्रभुपाद ने नहीं किया। प्रभुपाद कोई समाज में बदलाव लाने के लिए, छोटा मोटा कोई सामाजिक कार्य करने के लिए नहीं आए थे। प्रभुपाद यहां आए थे एक आध्यात्मिक क्रांति को प्रारंभ करने के लिए, ऐसी क्रांति जो उनके आविर्भाव और तिरोभाव के बीच में प्रारंभ होगी, लेकिन उनके तिरोभाव के बाद बढ़ना प्रारंभ करेगी और इतनी बढ़ेगी आने वाले वर्षों में। जैसे प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा है, प्रभुपाद के कुछ वाक्य उनकी डायरी में लिखे हुए हैं, आज भी वो डायरी वृंदावन में उनके घर में, उनका जो प्रभुपाद क्वार्टर्स है वहां पर रखी गई है, आप देख सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज, हर जज तिलक लगाकर जा रहा है, ये प्रभुपाद ने लिखा है। तो जिस समय लिखा लोगों को समझ नहीं, आज भी लोग समझते नहीं है क्या लिखा है प्रभुपाद ने, कौन से सुप्रीम कोर्ट का जज तिलक लगाता है, आज कोई नहीं लगाता। लेकिन अगर प्रभुपाद ने लिखा है तो एक दिन वो समय आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने उस आंदोलन को, उस क्रांति को प्रारंभ किया है जो ऐसा बदलाव समाज में लाएगी जो कृष्ण भक्ति पर आधारित होगा और हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। जब क्रांति होती है तो कोई बच नहीं पाता, आंधी तूफान आता है तो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, पशु हो, प्राणी हो, हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है ऐसी आंधी और तूफान से। और ऐसी कृष्ण भक्ति की आंधी का प्रारंभ, तूफान का प्रारंभ प्रभुपाद ने किया है। और जैसे तूफान शुरुआत में उसका एक केंद्र होता है और धीरे 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 वो फैलता है, ऐसे प्रभुपाद का आंदोलन है जो अब धीरे 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 फैल रहा है। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें उस क्रांति, उस तूफान का एक छोटा सा हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आगे चलकर जो ये इतनी बड़ी क्रांति में फैल जाएगी, हो सकता है हम लोग ना हो उस सब को देखने के लिए, हो सकता है हमारे जीवन में हम ये नहीं देख पाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हर जज तिलक लगाकर जा रहा है, हो सकता है। लेकिन हम उस समय को लाने वाले एक छोटे से निमित्त बन सकते हैं। हम हनुमान जी नहीं हैं, लेकिन हम एक गिलहरी बन सकते हैं जो ऐसा सेतु बांधे जिस पर चलकर इस जगत का हर व्यक्ति, जैसे रामचंद्र जी ने एक सेतु बांधा जिस पर चलकर सारी सेना एक महासमुद्र को पार कर गई। समुद्र को पार करना सबके लिए संभव नहीं था, उनकी सेना में भी सबके लिए संभव नहीं था। इसका प्रमाण जब हनुमान जी कूदना चाहते थे, उसके पहले सब चर्चा हो रही थी कौन जा सकता है, 100 योजन कौन कूद सकता है इस समुद्र को, तो सभी वानर कह रहे थे मैं तो केवल 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, ज्यादा से ज्यादा 40 योजन। तो उस सेना में भी सब लोग नहीं थे जो इस समुद्र को पार कर सकते, इसीलिए सेतु की आवश्यकता थी। तो जब सेतु बना तो उसमें हनुमान जी जैसे भक्तों ने, अंगद इत्यादि सारे बड़े बड़े महावीरों ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उस सेतु को बनाने में गिलहरी का भी योगदान है। भगवान श्री रामचंद्र ने उसके योगदान को भी हनुमान जी के समान ही माना, क्योंकि वो अपनी पूरी क्षमता से, जैसे हनुमान जी की क्षमता है कि वो बड़े बड़े पर्वत उठा लें और गिलहरी की क्षमता थी कि उसने रेत के कणों को उठाया, वही उसकी क्षमता थी। तो क्योंकि उसने अपनी पूरी क्षमता से भगवान की सेवा की, सेतु बनाने का कार्य किया, इसीलिए उस गिलहरी का भी गुणगान भगवान श्री रामचंद्र ने किया और उसकी सेवा को समान स्वीकार किया। इसी तरह प्रभुपाद का ये आंदोलन एक सेतु बंधन का कार्य है, जो इस भौतिक जगत के इस महासागर, इस भव सागर पर एक सेतु बना रहा है, जिस पर चलकर सभी लोग इस महासागर को, इस भव सागर को पार कर सके। और उसका जो प्रतिनिधित्व है, जैसे उस सेतु बंधन का प्रतिनिधित्व किया था स्वयं श्री रामचंद्र ने, इस सेतु बंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनके प्रमुख सेनापति हैं श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़े बड़ी चट्टानों को इस सेतु बंधन में लाकर रखा। हो सकता है हम लोग चट्टानों को ना ला पाए, लेकिन अगर गिलहरी की तरह हम उन रेत के कणों को लाकर भी सेतु बंधन में कार्य दें, तो हमारी सेवा भगवान के प्रति हो जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि ये जो आगे आंदोलन बढ़ने वाला है, ये इस्कॉन कोई छोटी सी संस्था नहीं है कि केवल बनी, थोड़े समय रही और फिर नाश हो गया। इस्कॉन ये एक आंदोलन है, इस्कॉन ये एक क्रांति है, और ये क्रांति, ये आंधी, ये तूफान रुकने वाला नहीं है अगले 10,000 वर्षों तक, क्योंकि इसके प्रणेता हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस आंदोलन में किस तरह से अपना योगदान दें पूरी क्षमता से। गिलहरी का एक गुण था, भगवान ने उसके रेत के कणों को नहीं देखा, भगवान ने उसके क्षमता को देखा। उसने अपनी पूरी क्षमता से भगवान की सेवा की। इसीलिए हो सकता है हम सबके अंदर, निश्चित है हम सबके अंदर उतनी शक्ति नहीं है जो भगवान ने श्रील प्रभुपाद को दी, लेकिन जो हमारी क्षमता है, अगर उस क्षमता से हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। और उस क्षमता से सेवा करने के लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव अनिवार्य है। हम श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ रहें। भगवान राम की सेना में हर वानर श्री रामचंद्र के प्रति कृतज्ञ था, और इसीलिए अपना जीवन देने के लिए तैयार था। नहीं तो वानरों को क्या लेना देना सीता देवी से, क्या लेना देना रावण से। वानर अपने जीवन में प्रसन्न थे, सारे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर थे, उनको तो पता भी नहीं था कि रावण उठाकर लेकर गया है सीता को। और जब सुग्रीव ने चारों तरफ संदेश भेजे, सारे वानर आए और उन्हें पता चला कि सुग्रीव के मित्र हैं, सुग्रीव की रक्षा की है, हमारे राजा की रक्षा की है, सारे कृतज्ञ हो गए, अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए श्री रामचंद्र जी के लिए। और रामचंद्र ने उस कृतज्ञता का फल दिया। रामचंद्र जी ने जब युद्ध हो गया, उसके बाद जितने भी क्षतिग्रस्त, जितने भी उस समय मृत वानर थे, उन सबको पुनर्जीवन दान प्रदान किया। उनमें से किसी को कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा की। इसी तरह ये आंदोलन है, अगर हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हुए छोटी से छोटी सेवा भी, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से इस आंदोलन में करते हैं, तो निश्चित है कि जैसे माया का आक्रमण हम पर हो रहा है और होगा, ये युद्ध है, तो ऐसा नहीं था कि युद्ध में वानर मरे नहीं, ऐसा नहीं था कि एक भी वानर को कोई तीर नहीं लगा, एक भी वानर को भाला नहीं लगा, क्षति नहीं पहुंची। वानर क्या, स्वयं लक्ष्मण जी को क्षति पहुंची। इसी तरह ये युद्ध है हमारा माया से, और स्वाभाविक है श्रील प्रभुपाद हमारे सेनापति हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे प्रणेता हैं, हमारे हमें प्रेरणा देने के लिए हैं। और स्वाभाविक है इस युद्ध में आक्रमण होगा, माया का प्रभाव होगा, अस्त्र शस्त्र लगेंगे, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि अगर इस युद्ध में हमारी मृत्यु भी हो जाए, तो भी जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने युद्ध के बाद सबको पुनर्जीवन प्रदान किया, और इतना ही नहीं सबको अपने साथ अयोध्या लेकर गए, सारे वानरों को, अरबों खरबों वानर थे वहां पर, उन सबको लेकर गए। इसी तरह इस आंदोलन में, इस युद्ध में अगर हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद के अधीन रहकर ये युद्ध हम लड़ेंगे अगर माया से, तो जब भले हो सकता है हमें क्षति हो जाए, भले हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन भगवान स्वयं हमें अपने धाम लेकर जाएंगे, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हैं। इसीलिए इस कृतज्ञता के भाव को बढ़ाना चाहिए। हम जिस आंदोलन में हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, अन्यथा क्या अधिकार है हमें भागवत सुनने का, क्या योग्यता है हमारी भागवत को स्पर्श करने की। भागवत सुनी उन लोगों ने जो पूर्ण विरक्त थे, सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, आगे उन्होंने कही, परीक्षित महाराज ने सुनी, उनके गुण देखिए, परम वैरागी दोनों के दोनों। सुखदेव गोस्वामी जन्म से वैरागी हैं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं, और परीक्षित महाराज जन्म से भक्त हैं, गर्भ से भक्त हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी गर्भ से विरक्त हैं, ऐसे परीक्षित महाराज गर्भ से भक्त हैं, उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तो ऐसे लोगों के लिए है श्रीमद् भागवतम। तो अब सोचिए हमारा क्या गुण है, हमारी क्या योग्यता है इस भागवत का श्रवण करने की, भागवत को स्पर्श करने की, लेकिन फिर भी हम लोग भागवत सुनते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, नाम लेते हैं, और ये सब केवल इसलिए क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में एक छोटी सी गिलहरी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उस गिलहरी के लिए आवश्यक है कि वो जीवन भर योगदान करते रहे कृतज्ञता के भाव में। जैसे हर वानर अपना प्राण देने के लिए तैयार था, हर भक्त को इस आंदोलन में, प्रभुपाद के आंदोलन में अपने प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। और सही दृष्टि में एक स्थान पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये वो समय था जब अमेरिका में जो हमारा फार्म है इस्कॉन का, वहां पर डाकुओं ने आक्रमण किया, गायें मारी गईं, और उस समय जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, उनको सूचना मिली, और प्रभुपाद को भक्तों ने आकर कहा कि ऐसे ऐसे आक्रमण हुआ और गायें मारी गईं। प्रभुपाद ने कहा कितने ब्राह्मण मारे गए, तो भक्तों ने कहा एक भी नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि भक्त को चाहिए कि अपने प्राण देकर भी विग्रह और गायों की रक्षा करें। तो ये हमें करना है, अगर समय आए प्राण देने का तो प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए, और अभी इस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कभी समय आया, कभी डाकुओं ने आक्रमण किया तब करेंगे। आज प्राण दीजिए, अपने अपना समय दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी चेतना दीजिए कृष्ण को, प्राण दीजिए कृष्ण को, इस आंदोलन के लिए प्राण दीजिए। तो जितना समय है जो हम कर सकते हैं वो कीजिए, रुकिए नहीं कि डाकू आक्रमण करेंगे तब आगे जाकर प्राण दूंगा, आज दीजिए प्राण, प्रभुपाद को समर्पण कीजिए। और ये हम कर पाएंगे अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव होगा, और उस कृतज्ञता के भाव को लाने के लिए अनिवार्य है कि हम प्रभुपाद के विषय में सुने, जाने कैसे प्रभुपाद ने जीवन बिताया, उनके जीवन से हम सीखें, और साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता को बढ़ाएं। ऐसे तो प्रभुपाद के विषय में कहने के लिए बहुत है, अगर हम बोलने लगे तो दिन चला जाएगा, कई महीने चले जाएंगे प्रभुपाद के लिए बोलते हुए, लेकिन हमें ये प्रारंभ भी करना है। इसीलिए यही संक्षेप में आपसे हम कहना चाहते थे कि प्रभुपाद लीलामृत जिस दिन हो, जैसे हर गुरुवार को हम लोग पढ़ेंगे, कृपया सभी आए। जिस दिन प्रभुपाद का प्रवचन हो, सोमवार, सही समय पर सभी आए। हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए, कई भक्त सोचते हैं, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सोचते हैं प्रभुपाद का प्रवचन है वो ठीक है, रिकॉर्डेड है, हम कभी भी सुन सकते हैं, और सुनते नहीं हैं कभी, वो केवल कहते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद हमारे लिए प्रवचन दे रहे हैं बैठकर, हमें कितनी तीव्रता से, हमारे हृदय में कितनी उत्कंठा होनी चाहिए, भागना चाहिए हमें सुनने के लिए कि प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं या प्रभुपाद का विषय सुनना। भागवत में क्या सुना परीक्षित महाराज ने, दसवें स्कंद तक, और दसवें स्कंद के बाद भी, और दसवें स्कंद में भी भक्तों की लीला, क्योंकि कृष्ण लीला भक्तों की लीला से अलग हो नहीं सकती। कृष्ण के चार गुणों में से चार जो केवल कृष्ण के गुण हैं, जो विष्णु में भी नहीं है, वो एक गुण है, हमेशा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण लीला भक्तों के बिना अपूर्ण है। कृष्ण लीला किससे करते हैं? भक्तों के साथ। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, राधा भजन यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। तो इसीलिए भक्तों के साथ, तो भक्त और कृष्ण की लीला अलग नहीं है। इसलिए पूरे भागवत में हम देखते हैं परीक्षित महाराज कितने उत्साह से, उत्कंठा से सुन रहे थे, अलग अलग भक्तों की कथा हो रही थी। इसी तरह हमें प्रभुपाद की कथा को सुनना चाहिए। हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे सरल उपाय है प्रभुपाद की कथा को सुनना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना और उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करना। तो इसलिए आज से इसको प्रारंभ करेंगे। आप सबसे विनती है कि इसको बड़े ध्यान पूर्वक सुने, श्रवण करें, याद करें क्या प्रभुपाद ने हमारे लिए किया। तो इसलिए आज क्योंकि प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा हुई कि हम प्रभुपाद के द्वारा जो भजन उन्होंने लिखा है, मार्की ने भागवत धर्म, उसको गाएं और फिर प्रारंभ करें, अर्थात प्रभुपाद से याचना करें कि वो, क्योंकि एक भक्त के विषय में कहना ये हरेक का कार्य नहीं है और ना ही हमारी योग्यता है कि हम श्रील प्रभुपाद के विषय में कह पाएं। इसलिए हम तो केवल दोहराएंगे जो कहा गया है, लेकिन उसको दोहराने में भी हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि इसको दोहराने में हमें ये शक्ति वो प्रदान करें कि आप सबके हृदय में कृतज्ञता का भाव जागृत हो सके। तो इसलिए इस भजन को गाएंगे, पेज नंबर 8 से प्रारंभ होगा। मार्की ने भागवत धर्म, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया ये भजन है।
बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, कि लागिया मिले तो करो ए बेगति, करो कृपा कैले कृष्ण किछु काज तब अनुमाने, नहे के नो आमी बेन उग्र स्थाने, किछु रजस्तम गुने सभाई आचन वासुदेव तथा रुचि नाही से प्रसन्न। सकल ही संभव है तुम्ही से कौतुकी। भावे बुझावे तार बुझे से रख ते तो कृपा कर प्रभु करी निज बश। भावे छाए सब हरे माया बश तुम्हारे छाए नाश माया रश तुम्हार सब इच्छा हो यदि तादर जीवनी चरित बे कथा से तुम्हार सब इच्छा भगवत कथा से सब अवतार प्रीत है सुने यदि कानी बार बार। भागवत कथा
श्रृण्वता ये सब साथ में गा सकते।
श्रृण्वतां सकथ कृष्णा पुण्याश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तयवद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चैतेरनाविद्धम् सिदं सत्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थेषु छिन्दन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। रजस्तम हते तबे पाइबे निस्तार हृदयेर अभद्र सब रुचि देता हर। रजस्तम पर बोझा बो कथा बरसे जाए शुद्र मिली नहीं कोनो शक्ति नहीं चोने चो प्रभु कथा बोली मारे से तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत कोरी बल क्षमता तुम्हार अखिल जगत गुरु सब कृपा हैले मोर कथा शुद्ध होबे सुनिया बार शोक दुख से भुजी दे तब कृपा है ले मोरा मनिया तो जदि प्रभु हमारे नचाते नाचाओ नचाओ प्रभु नाचाओ ते मते आनिया रघुकली जता नचाओ से मते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते नाचे भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब गारो भक्ति वेदांत नाम सार्थक करो भक्ति नाई भक्ति वेदांत नाम वेद भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब गारो भक्ति वेदांत नाम वेद सार्थक करो भक्ति नाई करो कृपा करे कृष्णा अधमे रखते की लागी अनिले तो करो एक गति करो कृपा करो कृपा करे कृष्णा अधमे रखते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा शिल प्रभु पदा
ये बहुत सुंदर भजन है प्रभुपाद लिखते हैं বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি, কি লাগিয়া নীলে হে তো করো এবে গতি। আপনি বড়ি কৃপা কি কৃষ্ণ অধমের প্রতি, সধম জীবকে প্রতি, ইহা পর কিস লিয়ে লায়ে হ্যাঁ, কি লাগিয়া এসে প্রভুপাদ কে হমে নহি পতা কি আপ কিস লিয়ে লায়ে হ্যাঁ। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নাহে কেনো আনি বেনা এই উগ্র স্থানে। কুছ তো আপকা কার্য হোগা কি আপ মুঝে এসে উগ্র স্থান মর লেকর আয়ে হ্যাঁ, তো এসা মেরা অনুমান হ্যায় কি আছে কিছু কার্য, কই তো আপকা কার্য হোগা তব আপ মুঝে ইহাঁ পর, নহি তো কিউ আপ মুঝে ইহাঁ পর এসে উগ্র স্থান মে লেকর আতে। তো কিস উগ্র স্থান কি বাত কর রহে হ্যাঁ, যে প্রভুপাদ পাশ্চাত্য জগত মে যা রহে হ্যাঁ, উস সময় উনহোনে ইয়ে লিখি থি, তো উসমে ও কহ রহে হ্যাঁ কি মুঝে নহি পতা কি আপ কিউ মুঝে ইহাঁ এসে স্থান মে লেকর আ রহে হ্যাঁ, লেকিন আপকা কই তো কার্য হোগা। রজস্তমো গুণে সবাই আচ্ছন্ন, সারে লোক ইহাঁ রজগুণ আর তমোগুণ সে আচ্ছন্ন হ্যাঁ। ইসকা কবি আর বহুত অচ্ছি তরহ সে ইসকো সমঝায়েঙ্গে কি কিউ প্রভুপাদ নে ইয়ে লিখা। বাসুদেব কথা রুচি নাহি সে প্রসন্ন, কিসি কো কোই রুচি নাই হ্যায় ভগবান কে বিষয় মে সুননে কে লিয়ে। তবে যদি তব কৃপা হয় অহেতুকি, সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকি। তো না কিসি কো রুচি হ্যায় ভগবান কি কথা সুননে মে, আর সব লোক রজোগুণ তমোগুণ কে কার্যো মে লগে হুয়ে হ্যায়, পাপ কার্যো মে লগে হুয়ে হ্যায়, লেকিন ফির ভি अगर आपकी अहेतु की कृपा हो जाए तो फिर सब कुछ संभव हो जाएगा। कि भावे बुझाए तेरे तारक बुझे से ही रस, एत कृपा करो प्रभु कोरी निज बश। तो हमारे वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ऐसी आप कृपा कीजिए कि किस तरह से मैं जो बोलूं उनको वो समझ में आ जाए, नहीं तो आपकी कथा उनको कहां समझ में आने वाली, आपकी कृपा होगी तब समझ में आएगा। क्यों? তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়াবশ, আপকি ইচ্ছা সে সবই লোক মায়া কে অধীন হুয়ে হ্যাঁ। তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ, তো এই যে মায়া কা পাশ হ্যায় বন্ধন হ্যায়, ইয়ে আপকি ইচ্ছা সে হি নাশ হো সকতা হ্যায়। তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার। অগর আপকি কৃপা হো গই, তব ইচ্ছা হো গই, তব ইয়ে লোক সব ইনকা উদ্ধার হো যায়গা যাহা মে যা রহা হুঁ। बुझी वे निश्चय तब कथा से तुम्हार, और तब वे लोग आपकी कथा से कथा को समझ पाएंगे, तब उनका उद्धार होगा। तो कथा को समझ कर उनका उद्धार निश्चय होगा अगर वे, अगर आपकी इच्छा हो। भागवतेर कथा से तब अवतार, धृत हो यशु ने जदि काने बार बार। भागवत की कथा ये आपका अवतार है, श्रीमद् भागवत के रूप में वृंदावन दास ठाकुर भी लिखते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। तो भागवतेर कथा से तब अवतार, ये आपका अवतार है। धृत हई अश्वने यदि काने बार बार, तो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है अगर बहुत बार बार इस कथा को सुनता है। फिर वो भागवत के श्लोकों को कहते हैं, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से श्लोक है। वैसे अगर किसी व्यक्ति को प्रचार करना है तो भागवत का पहले स्कंद का दूसरा अध्याय पूरा याद कर लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है उसके। रजस्तमो हते तबे पाई बे निस्तार, हृदय र भद्र सब घुची बे ताहार। रजोगुण तमोगुण से वे लोग निस्तार पा सकते हैं, मतलब दूर जा सकते हैं, और उनके हृदय के जितने भी अभद्र हैं सब दूर हो जाएंगे अगर वो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे। की कोर बुझाबो कथा बोर से चाहिए, तो वरदान मांग रहे हैं प्रभुपाद। शूद्र आमी दीन हीन कोनो शक्ति नहीं, मैं तो बहुत शूद्र व्यक्ति हूँ, दीन व्यक्ति हूँ, हीन व्यक्ति हूँ, कोई शक्ति नहीं है मेरे अंदर, तो आप ऐसा वर दीजिए कि जिससे वे लोग आपकी कथा को समझ सकें, बस ये वर चाहिए। की कर बुझावो कथा बर से ही चाहिए, कि उसके कारण वे लोग आपकी कथा को समझ सकें। क्या करूँ मैं, वहाँ जाकर कैसे प्रचार करूँ। अथ चेने चो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो यही बारे। तो मैं तो जाकर कथा कहूँगा, जो आपकी इच्छा हो इस बार वो आप कीजिए। अखिल जगत गुरु वचन से अमार, अलंकृत कोरी बारे क्षमता तुम्हार। आप अखिल जगत के गुरु हैं और इसीलिए मेरे वचनों को आप अपनी कृपा से अलंकृत कीजिए। अलंकृत कोरी बारे क्षमता तुम्हार, जो आपकी कृपा है तब मेरे अंदर क्षमता आएगी कि मैं कुछ बोल सकूं। तो आपकी कृपा से मेरे वचनों को अलंकृत कीजिए। तब कृपा हैले मोर कथा शुद्ध हबे सुनिय सवार शोक दुख चेक। जब आपकी कृपा हो जाएगी, जब आप मेरे शब्दों को अलंकृत कर देंगे अपनी कृपा से, तब मेरी जो कथा है वो शुद्ध हो जाएगी और उस शुद्ध कथा को सुनकर सभी लोगों का जो शोक और दुख है वो दूर हो जाएगा। आनी आचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते। अगर आपकी इच्छा है मुझे नाचाने की तो मैं आपके हाथ में कठपुतली हूँ, आपका एक निमित्त हूँ। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, जैसी आपकी इच्छा हो मुझे नाचाइए, मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। जहाँ ले जाना चाहें, जो कराना चाहें मुझसे कराइए, जहाँ नचाना चाहें नचाइए। काष्ठे र पुतली जथा नाचाओ से मते, जैसे एक लकड़ी की पुतली होती है, उसको आपने देखा होगा बचपन में, अभी तो नहीं होता है, लकड़ी की कठपुतली कहते थे उसको, उसका वो नाचती थी, दिखता नहीं था, कोई और उसको नचाता था लेकिन वो उसके हाथ पांव ऊपर होते। तो प्रभुपाद कह रहे काष्ठे र पुतली जथा नाचाओ से मते, जैसे लकड़ी की कठपुतली होती है लकड़ी की, उसको उसको नचाता है कोई व्यक्ति हाथों में धागे बांधकर, ऐसे ही आप मुझे नचाइए क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूँ। भक्ति नाई वेद नाई ना मैं खूब दारो, न मेरे अंदर भक्ति है न वेद या ज्ञान है, तो न भक्ति है न ज्ञान है ना मैं खूब दारो। इस ना मैं खूब दारो का अलग अलग दो जगह वर्णन किया गया है कि एक जगह प्रभुपाद कह रहे कि बहुत बड़ा बस नाम हो गया है मेरा लेकिन भक्ति नहीं है वेद नहीं है। दूसरी जगह किया गया है कि प्रभुपाद कह रहे भक्ति नहीं है वेद नहीं है लेकिन नाम में मुझे बड़ी रुचि आपके नाम। तो भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नामे ये सार्थक करो। तो ना तो भक्ति है न ज्ञान है लेकिन नाम है भक्ति वेदांत, और ये वेदांत भक्ति वेदांत नाम आप सार्थक कर सकते हैं, अर्थात मेरे हृदय में भक्ति प्रदान कीजिए और ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ऐसे ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर प्रार्थना अमेरिका जाने से पहले लिखी, और अब समय हुआ है लेकिन इच्छा थी कि प्रभुपाद लीलामृत थोड़ी सी पढ़ें, अगर आप सबकी अनुमति हो 5-10 मिनट है अनुमति, कितने लोगों की अनुमति है हाथ ऊपर कीजिए। यू डोंट वांट, तो फिर ओके, यू अंडरस्टैंड हिंदी ना, देन व्हेन आई आस्क यू व्हाई यू डिडंट रेज योर हैंड, थिंकिंग समथिंग, और यू वांट टू गो। अच्छा, श्रील प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा इसकी रचना की गई है। जब श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव हो गया 1977 में, तो फिर उनके जीवन के विषय में लिखने के लिए आवश्यकता हुई, जीबीसी में चर्चा हुई, और फिर जीबीसी ने ये कार्य सत्स्वरूप महाराज को 1978 में इस कार्य को उनको सौंपा गया कि आप इसको लिखें, और फिर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तो हम लोग थोड़ा बहुत बचपन का प्रकरण श्रील प्रभुपाद का पढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं, हम सोते होते और पिताजी आरती करते होते, घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण को नमन कर रहे हैं। प्रभुपाद जब उठा करते थे सो के बचपन में, छोटे थे और आँख खोलते थे तो देखते थे कि पिताजी भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, घंटी बज रही है, तो ऐसे वातावरण में वो बड़े हुए हैं। इसीलिए ये उदाहरण है आजकल के माता पिताओं के लिए कि वो अपने बच्चों को फिल्म के गाने सुनाकर उठाए नहीं, टीवी का, आजकल बच्चे उठते तो टीवी का साउंड सुनाई देता है या पता नहीं और कुछ होगा। आजकल अब आगे बढ़ गए, प्रगति हो गई है, हमारे समय में तो टीवी तक थे, हम लोग अब पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो बच्चों को ये सब ध्वनियाँ सुन के उठाएंगे तो क्या होगा बच्चों के मन में, वो सब ऐसे ही भौतिकवादी बनेंगे। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता बनना बड़ी तपस्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा उठ गए और माता पिता सो रहे हैं और बच्चा उठ के देखे अच्छा ठीक है आलसी। तो अगर बच्चे को आपको ये देना है तो उनको पहले उठकर नहाकर पूजा करना चाहिए जब तक बच्चा उठे,
जब बच्चे की आंख खुले तो माता पिता पूजा कर रहे हो तो ये करना चाहिए। मतलब आपको भी तपस्या करनी चाहिए। बच्चों का पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है। तो केवल यही तपस्या नहीं है कि बच्चा कुछ मांगता रहता उसको दे हो या उसके पीछे भागो। तपस्या ये है कि उसके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद के पिता ने कैसा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि वहाँ खोलते और देखते कि पिताजी पूजा कर रहे हैं तो स्वयं बालक को भी इच्छा हो जाती है जाने की। तो आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता के निवासी, जिनमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कई मुसलमान और कुछ अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण का जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत उपवास कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। दूसरे दिन, ये कौन से समय की चर्चा हो रही है कोई बता सकते हैं? कौन सी जन्माष्टमी का, क्या क्यों वर्णन प्रभुपाद के जन्म के समय किया गया? जिस वर्ष में प्रभुपाद का जन्म हुआ तो ये उस वर्ष का वर्णन किया गया है कि वहां पर अंग्रेज भी थे इत्यादि थे तो कलकत्ता में जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। दूसरे दिन कलकत्ता के उपनगर टॉलीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। कोई बता सकते हैं कौन सी तारीख थी? हमारे संस्थापक आचार्य का जन्म दिवस कौन से दिन था? हाँ, एक नौ, हाँ सोचा, 1 नवंबर 1896। बहुत अच्छा। तो 1 सितंबर 1896 याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग याद रखते जन्माष्टमी के अगले दिन, वो भी ठीक है जन्माष्टमी के अगले दिन हुए, लेकिन फिर भी कौन सी तारीख है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो 1 सितंबर 1896। तो दूसरे दिन अर्थात 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता के उपनगर टॉलीगंज में एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जब कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसीलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा। प्रभुपाद का पहला नाम नंदूलाल। किंतु उसके पिता गौर मोहन दे और उसकी माता रजनी ने उसका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हैं या निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माता पिता के घर गई थी, अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माता पिता के साथ अपने घर 151 हैरिसन रोड पर आ गए। जो व्यक्ति विश्व आंदोलन प्रारंभ करने वाला है, एक विश्व की क्रांति विश्व में लाने वाला है, जन्म कहाँ हो रहा है? छोटा सा घर है, 2 छोटे से। आप में से किसी ने देखे हैं प्रभुपाद का घर? यू वेंट? ओके। और किसी ने? अगली बार कभी हम लोग मायापुर इत्यादि गए तो कलकत्ता में निश्चित प्रभुपाद के घर जाएंगे, जहाँ 2 घर, एक उनका जो घर जहाँ रहते थे, दूसरा जहाँ जन्म हुआ। छोटा सा घर। तो देखिए वो व्यक्ति क्या भगवान बड़े ऐश्वर्य से प्रभुपाद को नहीं ला सकते थे? कहीं एक विशाल राजघराने में उनका जन्म होता, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता, सारा सारा राज्य को छुट्टी दे दी जाती, राजा खड़े होते, इत्यादि खड़े होते, इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं जो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन कहाँ पर? छोटे से एक घर में, 2 कमरों का एक घर, और वो भी कोई अच्छी जगह नहीं थी, कलकत्ता से भी थोड़ा सा दूर, वहाँ पर प्रभुपाद का जन्म हुआ। तो भगवान ऐसा क्यों करते, जैसे प्रभुपाद को अगर लेकर भी गए अमेरिका तो प्लेन में नहीं लेकर गए, है ना। भगवान चाहते तो ले जाते ना, खुद तो पुष्पक में उड़ते हैं, है? तो प्रभुपाद को क्यों नहीं ले गए, एक प्लेन का टिकट दे देते, एक महीने की उनको तकलीफ उसमें जहाज में जाना पड़ा। क्या भगवान के लिए कठिन था अपने शुद्ध भक्त को एक प्लेन का टिकट देना, तो क्यों नहीं दिया भगवान ने, क्यों उनको ऐसे कष्ट, उसके लिए भी कितना मांगना पड़ा, हम लोग जब उस प्रसंग पर आएंगे तब चर्चा करेंगे, वो टिकट भी कितना मांगना पड़ा और गए कैसे, कैसे भेजा भगवान ने एक जहाज में, और वो भी कौन सा जहाज जिसमें यात्री जाते, वो नहीं यात्री जहाज नहीं, मालवाहक जहाज, माल भरा जाता है उसमें भेज दिया। कितने आश्चर्य की बात है, क्या भगवान जानते नहीं थे कि मेरा भक्त है, जानते नहीं थे इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो कैसे उन्होंने किया, क्या कारण है, और इतनी छोटी सी जगह में हो रहा है। बहुत से कारण हैं। पहला कारण, भगवान दिखाना चाहते थे कि मेरा भक्त हर अवस्था में शुद्ध है, वो कभी मुझ पर अपने विश्वास को खोता नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैं तो आपका आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ, आप फ्लाइट टिकट का अरेंजमेंट करो, है ना, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं आप प्रवचन के लिए बुला रहे हो, आप अरेंजमेंट करो हमारा, हमें क्या। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं कि आपका आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ, व्यवस्था करो, नहीं, खुद मेहनत की, प्रयास किया, ये सेवा है। तो खैर छोटे से में हुआ, ऐसा होता है। सगर महाराज का नाम सुना है आप लोगों ने, भगवान रामचंद्र जी के वंशज सगर महाराज। सगर महाराज जब पैदा हुए तो वो विष के साथ पैदा हुए, जब वो माँ के गर्भ में थे तो अन्य पत्नियों ने राजा की उनको जहर दे दिया था, लेकिन सगर महाराज मरे नहीं, हर्षशोक तो मर गया था, लेकिन हर्षशोक किसका पुत्र था, चित्रकेतु महाराज, लेकिन सगर महाराज मरे नहीं, इसलिए जब जन्म हुआ तो उनका नाम हुआ सगर, गर यानी विष, संस्कृत में विष को गर कहते हैं, और सगर मतलब जो विष के साथ पैदा हुआ, मतलब उसको विष दे दिया, उसने विष खा लिया फिर भी मरा नहीं, जीवित पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। तो जो विष खाकर या विष से पैदा हुआ, लेकिन उसके कारण पृथ्वी पर गंगा अवतरित हुई आगे चलकर, तो विष खाया लेकिन अमृत प्रदान किया। ऐसे ही प्रभुपाद जो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, इतना दुनिया का उद्धार करने वाले हैं, जन्म हो रहा है एक छोटे से घर में, आगे इनकी चर्चा करेंगे। और एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप सबसे विनती है कि हर गुरुवार जब हम लोग इस पर चर्चा करें, कृपया आप समय पर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।